भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नास्तपये शवदेशो नित्यं भगवदसेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। एते शंसाकलापुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रियारिव्याकुलं लोकं मृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकेतनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखसमनस्तं नमामि हरिं परं। निगमकल्पतरोर्गलदं पलं सुखमुखदमृतदिवसं मदं विभदावगतं रासमालयं मुहुरोरासिगभो विभावुकः। हम श्रीमद्भागवत हमसे पढ़ रहे हैं षष्ठ स्कंद अध्याय चार श्लोक, पहले श्लोक, प्रथम श्लोक। तथा फिर से बोलिए शब्द आप पहले। तथा प्रचेतसा अस्य कन्यां अनुनीता स्वयं स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनायां आस दुहित्रे पितृवत्सलां। शिशुकवाचां तथा प्रचेतसोऽसिं अन्यमनुनीता स्वयंभुवां षष्ठीं सञ्जनयामासां दुहिते पितृवत्सलः। अनुवाद और तात्पर्य शिल ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की श्री सुग्रीव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदंतर ब्रह्म जी की प्रार्थना पर प्रजापति तक्ष ने जिन्हें प्रचेतस कहा जाता है अपनी पत्नी असिकनी की गर्भ में 7 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। तत्पर्य अपने अनेक पुत्रों की हानि की घटनाओं के बाद दक्ष को नारद मुनि के प्रति की गए अज्ञता पर पश्चाताप हुआ। तब श्री ब्रह्म दक्ष के पास गए और उनको फिर संतान उत्पन्न करने की सलाह दी। इस बार दक्ष सावधान थे, अथा उन्होंने पुत्रों के बजाय कन्या ही उत्पन्न की, जिससे नारद उन्हें संन्यास स्वीकार करने पर विवश करके विरक्त ना बना सके। स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं बना है, उन्हें तो अपने अच्छे पतियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि पति मुक्ति का पत्र है तो उसकी पत्नी को स्वयं एवं मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि शास्त्रों का कथन है, पत्नी अपने पति के पवित्र कार्यों में हिस्सा बताने वाली होती है। अतः स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की पतिव्रता और आज्ञाकारिणी बने, तभी बिना किसी बिना प्रयास के वो अपने पति के लाभ में हिस्सा बनता सकती है। इसमें भी अध्याय की भूमिका है, ये मैं भी पढ़ रहा हूँ अध्याय का, इसमें उल्लेख किया है दक्ष की कन्याओं का वंश, इसमें प्रभुपद भी उल्लेख किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष की पत्नी असिक्नी के गर्भ से 7 पुत्रियां उत्पन्न हुई। जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वे विभिन्न पुरुषों को दान दे दिए गए। नरर मुनि ने दक्ष की इन संतानों को स्त्री जाति होने के कारण वैराग्य जीवन निर्वाह करने का उपदेश नए दिया। इस प्रकार इन पुत्रियों को नरर मुनि से बचा लिया गया। इन पुत्रियों में से 10 धर्मराज के साथ व्याधि गाय, 13 कश्यपुनि को और 27 चंद्रदेव को दे दी गाय। इस प्रकार 50 पुत्रियां बन दी गाय। शेष 10 पुत्रियों में से 4 कश्यप को और 2 भूत अंगिरा तथा कृषस्वा को प्रदान की गाय। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि विभिन्न महापुरुषों के साथ इन 7 कन्याओं के संयोग से ही यह समस्त ब्रह्मांड विभिन्न प्रकार की जीवात्माओं से परिपूर्ण हो सका, जिसमें मनुष्य देवता असुर पशु पक्षी तथा नाग सम्मिलित है। ओम अज्ञानतिमरंदस्या ज्ञानंजन सलकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सापदन्तिकं वन्देयं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनारघुनतन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललितश्रीविशगन्विदंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोविगकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तर्तगञ्जनगुणङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैता गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिशुकुवाच तथा प्रचेतसो सिक् ज्ञां मानुनीत स्वयंभुवा षष्टिं संजानयामास दुहिति पितृवत्सलः। श्री सुग्रीव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, तदंतर ब्रह्म जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, जिन्हें प्रचेतस कहा जाता है, अपनी पत्नी असिक्नी के गर्भ से 7 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। सुदक्ष की कन्या के बारे में इस अध्याय में उल्लेख किया है। सुग्रीव गोस्वामी परीक्षित को बताते थे उनके विवाह करके। आवाज काम है अभी, ठीक है? तो दक्ष ने पुत्रियों को अलग अलग महापुरुष को दिया विवाह के माध्यम से, कन्यादानम समर्पयामि, जिस विवाह की समय मंत्रोच्चरण करके ब्राह्मण के माध्यम से और दान देता है, कन्यादानम कन्या को पुत्री को, और ये तो जैसे दक्षा ये भौतिक जगत में प्रभुपाद ने भी उल्लेख किया है, हम समझ सकता है कि प्रभुपाद ने बोला है कि दक्ष, उनका नाम भी दक्ष है, निपुण है इस भौतिक जगत में अच्छे तरह से रहने के लिए, और भौतिक जगत में जो रहता है मनुष्य शरीर जब प्राप्त होता है, सब लोग चाहता है कि अच्छे तरह से रह सकता है, स्वाभाविक है कि जगह होना चाहिए रहने के लिए, और अच्छा खाना मिलना है, कपड़े मिलना है, जिससे हम सुखपूर्वक रह सकता है। और अगर कोई भी ब्रह्मचारी आश्रम में भी हो, उनको भी चाहता है कि अच्छा रहना, अच्छा आश्रम में रह सकते सुखपूर्वक, और कपड़े मिलना है, ये स्वाभाविक है। तो ये दक्ष तो अच्छे तरह से रहने के लिए तो व्यवस्था उन्होंने तो उनके शक्ति से शक्तिशाली थे किए थे, और इसके बाद उनके पुत्र थे शक्तिशाली थे गृहस्थ, और कब पत्नी के घर में पहले संतान थे, और लेकिन जैसा हमने पढ़ा है सुना है, जब ये उनको भेज दिया था तपस्या करने के लिए वन में, दक्ष ने भेज दिया अपने पुत्र को इस विचार से कि अभी तपस्या करके, क्योंकि ये तो जरूरत है, सबको करना है, विशेष करके पुरुष जो होता है, स्त्री तो घर में रहना है, और जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है, और पिताजी के अनुसार माता जी के अनुसार घर का काम तो सीखना है, किसे भोग बनाना है ठाकुर जी के लिए, और सिलाई सीखना भी है, तो कि सरल जीवन है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत भजन करना ही है, ये जरूरत है, लेकिन लड़के को तपस्या करना चाहिए, तपस्या ब्रह्मचार्य ना, जैसे ऋषभदेव भी उन्होंने बोला है, और हर शास्त्र में हम सब गुरुजन कहता है कि ब्रह्मचारी और बच्चे लड़के पुत्र को गुरुकुल में भेजना है, जब पंच साल के है गुरु के पास भेजना है, विशेष करके जिनके योग्यता है, जो ब्राह्मण कुल के क्षत्रिय कुल के और कभी कभी वैश्य के कुल भी ये गुरुकुल में भेज दिया गए थे, लेकिन शूद्र के जाति क्योंकि उनके पास ज़्यादा बुद्धि नहीं है, स्मरण शक्ति नहीं है, इसलिए शास्त्र अध्ययन की उनकी योग्यता नहीं है शास्त्र के अनुसार। लेकिन दूसरे ऊपर तीन श्रेणी के विशेष करके ब्राह्मण, उनको जरूरत था कि गुरु को जाना है, गुरु के पास शास्त्र अध्ययन करना है, तपस्या करना है, जिससे ये योग्य बनता है। ये अब जब बड़े हो जाता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए और परिवार का देखभाल करने के लिए, लेकिन कोई है जो सदिनाय खाना चाहते थे, ये नास्तिक ब्रह्मचारी जिन्होंने अनुभव किया है कि वास्तव में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जरूरत नहीं है, अच्छा है कि गुरु के पास रहते हुए और शास्त्र अध्ययन करें, इसके बाद सन्यास आश्रम में भी प्रवेश करते हुए अच्छे तरह से ठाकुर जी के भगवान के सर्वजन करते हुए, इसके बाद जो सीख लिया है दूसरे को बताते हुए, ऐसे करते करते हुए तो लीन हो जाता है कृष्ण भवनामृत में। तुमको भेज दिया था ये दक्षिण है अपने पुत्र को वन में तपस्या करने के लिए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे वापिस आवे तपस्या करके 5-10 साल, इसके बाद राज्य का देखभाल करना है, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए ये संतान उत्पन्न करते हुए पूरे विश्व में तो फैलाने के लिए अपना जो कुल जो है यम की इच्छा थी। लेकिन नरेंद्र मुनि जो परम वैष्णव है, भगवान के शुद्ध वैष्णव, ये उनके दृष्टि तो तरह से लाग था। ये योग्य लड़का है, उनको बताना है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने ठीक नहीं है, तो ब्रह्मचर्य रहना है, तपस्या करते हुए आगे जाना है, भक्ति मार्ग में उत्तम अवस्था पर पहुंचना है। ऐसे करते हुए शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम में जाना है, ये परम गति है। तो नरेंद्र मुनि परम वैष्णव उनके प्रभाव से सब उनके पुत्र मान लिया और रह गया वान में। तो दो बार हुआ ऐसा करते हुए, तो थोड़ा सा नाराज हो गया था और काफी नाराज हो गया था, और उनको साप भी दिया नरेंद्र मुनि को कि आप एक जगह में नहीं रह सकता है सिर्फ 3 दिन के लिए। तो शुद्ध वैष्णव की कोई इसमें कोई असर नहीं है जब कोई भी साप देता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कोई बार नहीं है हमसे, क्योंकि ये दक्ष तो ये राजत है, सम्राट है, जो कहता है इसके अनुसार भी चल सकते, कोई बार ना है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अनुभव किया दक्ष की वास्तव में महापुरुष को शाप देना उचित नहीं है, यह हमारा हानि होगा, उसका हानि नहीं है, शुद्ध वैष्णव के कोई हानि नहीं है, यह हमेशा भगवान की सीन के सेवा में लीन है। और जैसे चैतन्य चैतन्यमृत में भी एक लीला है, महाप्रभु के महाप्रभु जब कीर्तन करते थे मायापुर नवद्वीप में शिव संगम में शिव स्पंदित के कार पे, वहाँ पर कीर्तन करते थे, और शिव उनके परिकार उनके प्रिय भक्त उनके साथ है। तो एक ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, उन्होंने सोचा मुझे भी इसमें भाग लेना है, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं थे और ये शिव दूध पीते थे, तो महाप्रभु ने मना किया और भक्त लोग तो क्रोधित होकर उनको शाप दिया महाप्रभु को कि वे सुखपूर्वक इस भौतिक जगत में नहीं रह सकता है, उनके ये गृहस्थ आश्रम का जीवन अच्छा नहीं होगा। तो हंसते हुए ये सुन लिया, क्योंकि महाप्रभु वैसे ही उनकी इच्छा थी, ये सन्यास आश्रम में थे, लेकिन उन्होंने सोचा अलग अलग कारण से, लेकिन मूल कारण यह था कि ये महामंत्र सबको बांटना है, तो इसके लिए जब गृहस्थ आश्रम में है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब माता जी पिताजी का परिवार का देखभाल करना है तो उनको भी समय देना है, ये समस्या वो समस्या है, तो ज़्यादा समय दूसरे को नहीं दे सकता है, दूसरे के हित के लिए कम समय दे सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा ये सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हुए मैं अच्छी तरह से प्रचार कर सकता हूँ, कृष्ण नाम का वितरण कर सकता हूँ, और ऐसे उन्होंने किया है। लेकिन इसमें इस लीला में अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख किया है, जो ये लीला का श्रवण करता है, जो महाप्रभु का स्मरण करता है, जो के शरणागत बखता है, अगर कोई भी अगर ये सुनता है तो दूसरे अगर कोई दूसरे लोग शाप देता है इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये शुद्ध वैष्णव जो भगवान की सेवा में लीन है तो भगवान उनके देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करता है, जिससे वे अच्छे तरह से रह सकता है और भजन कर सकता है। तो इसके बाद दक्ष ने तो अनुभव किया कि मैंने गलती किया है, उसको शाप दिया है, नहीं करना था, और थोड़ा सा लज्जित होकर उसके पास गए, ये ब्राह्मण जी के पास गए, उनसे सलाह दिया कि अभी कैसे आगे जाना है, इस पूरा विश्व में तो अभी ज्यादा लोग नहीं है तो बाहर जाना है पूरे विश्व में, तो क्या करूँ। उन्होंने इशारा दिए कि ठीक है तो संतान तो होना चाहिए, लेकिन कन्या जब होते हैं तो ये नरेंद्र मुनि ये नहीं छीन लेंगे। मतलब यह है कि कन्या तो बाहर नहीं जाती है, वन में नहीं जाती है, घर पे रहती है, और नरेंद्र मुनि तो पुरुष को उपदेश देते थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये तो एक प्रकार के जो वैदिक संस्कृति के अनुसार पुरुष पुरुष के साथ रहता है, स्त्री स्त्री के साथ रहता है। शिव जब गृहस्थ आश्रम में है तो पत्नी के साथ रहता है, और बच्चे स्त्री का कन्या का देखभाल भी करना है, माता जी का की सेवा भी करना है, लेकिन अन्यथा दूसरे स्त्री के साथ ज़्यादा बात और व्यवहार ना करना चाहिए, गृहस्थ के भी कम से कम करना है। लेकिन आजकल के ये परिस्थिति के अनुसार हमको भी देखना है, कालदेश पत्र के अनुसार हमको आगे जाना है, और जैसे आज के समय ये तो संभव नहीं है, और लड़कियां भी स्त्री भी इधर उधर जाती है और गाड़ी भी चलाती है और बहुत कुछ करती है, इसलिए जो प्रचार कर रहा है पुरुष स्त्री को भी दिव्य ज्ञान देने के प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी से रहना चाहिए, ये इसे हमको समझना चाहिए। और इसलिए नरेंद्र मुनि भी उदारनाथ के लिए तो उनके कन्या के पास आए गए उपदेश देने के लिए, जरूर नहीं था। और इसके बाद तो ये दक्षा जिसे इसमें अभी सुनेंगे और प्रभुपद इंगित किया है, तो अलग अलग महापुरुष को दिया विवाह के समय कन्यादानम करते हुए, और इसके बाद तो ये पूरे विश्व में तो अलग अलग तो उनके संतान से बढ़ गया। और इसमें यहाँ पर तो श्लोक में कहता है द्वित्री पितृ वत्सला, यह है कि कन्या जो थी अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। ये वास्तव में संभाव ये स्वाभाविक है कि जो ये भी शास्त्र के अनुसार जो संबंध जो भी होता है ये परिवार में तो प्रेम संबंध है, स्नेह जब विशेष करके जब भगवान केंद्र में है तब वास्तविक प्रेम और स्नेहपन होता है, अन्यथा तो वास्तविक नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि आसपास में परस्पर में स्नेह संबंध है, प्रेम संबंध है पति पत्नी के बीच में, और उनके पिताजी माता जी के संबंध में भी। और लेकिन फिर भी जब स्त्री आती है तो सास और सासुर में थोड़ा सा कभी कभी ये भी स्नेह होना चाहिए वहाँ पर। और इसके बाद पुत्र या पुत्री के सारे भी स्नेह संबंध है, ये स्वाभाविक है। और ये भी प्रॉपर ने उन्होंने उल्लेख किया है कि जो सबसे शुद्ध संबंध प्रेम संबंध जो होता है इस भौतिक जगत में ये माता और उनके बच्चे के संबंध में जो होता है, पुत्री हो या पुत्र हो, क्योंकि वहाँ पर ये माता जी माँ बच्चे की सेवा करती है निस्वार्थ से, कुछ नहीं मांगती है, और उनको तो मालूम है कि क्या दे सकता है। जब है ना बच्चे है छोटे हैं तो सेवा करती है पूरा दिन, रात को भी जब रोता है जब उस समय माता जी सेवा करती है, कभी कभी सहयोग देता है पिताजी। और इसके बाद तो ये तो बच्चे महसूस कर सकता है कि प्रेम देता है, इसलिए बाद में भी ये स्वाभाविक है कि ये भी वापस देना चाहती है ये स्नेह प्रेम। और ये भी उल्लेख किया है शास्त्र में कि ये माता जी के उनके बच्चे के प्रति स्नेह है, प्रेम है, लेकिन जरा अच्छा संबंध पुत्र के साथ है, और बाद में भी पुत्र माँ के साथ जरा अच्छा संबंध है शुरुआत में जब छोटा है, और पिताजी पुत्र के उनके उनके प्रति जरा स्नेहा है, और वैसे ही पुत्री जैसे यहाँ पर उल्लेख किया है कन्या पिताजी को अत्यधिक स्नेह करती थी, ये भी शास्त्र के अनुसार है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो पिताजी तो लड़के के ज़्यादा देखभाल करना है, और माताजी कन्या पुत्र का देखभाल लड़की का देखभाल करना है, और इसी समय थोड़ा सा यह है कि जब 14-15 साल के होता है तब उसी समय पिताजी ज़्यादा समय कन्या के साथ नए रहता है शास्त्र के अनुसार भी, क्योंकि माया के प्रभाव है, और इसलिए पुरुष पुरुष के साथ रहना है, स्त्री स्त्री के साथ रहना है। लेकिन ये इसमें उल्लेख किया है कि शुरुआत में कन्या के पिताजी के प्रति स्नेह है, अत्यधिक स्नेह है, और तत्पर्य में प्रभुपाद एक दो बार बताते हैं जो महत्वपूर्ण है, और इसमें कहता है कि स्त्रियों के लिए वैराग्य नहीं है बना है, तुमको वैराग्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करना उनके लिए जरूरत नहीं है, वे घर पे सेवा करना है। ये पहले ऐसा था जिससे सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग में स्त्री का धर्म है घर पे माताजी पिताजी की सेवा करना है पहले, और भोग बनाना सीखना है, और कपड़े किसी लाइए ये चीज़, और देखना है कि घर पवित्र रहता है तो सफाई भी करना है घर पे, ये उनके ये धर्म है कर्तव्य है। और इसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है और कन्यादानम होते हुए तो पति के साथ रहती है, और वहाँ पर पति की सेवा करना है, और इसके बाद सास-ससुर की सेवा करना है, और अतिथि की सेवा करना है, और दूसरे परिवार के जो जहाँ पर रहता है विशेष करके भोग बनाने के माध्यम से और सफाई करने के माध्यम से, लेकिन विशेष करके भोग बनाने के लिए उसका ये धर्म है घर पे। और तो घनिष्ठ संबंध तो पति के साथ है, तो जनों के वहाँ पर भी सेवा होता है विनम्र भाव में रहते हुए कि ये मेरे स्वामी है, हमेशा इस विनम्र भाव में रहना है, ऐसा ना सोचना है कम बराबर है पुरुष है और स्त्री, और इसके कोई जलातर नहीं है, इस भावना नहीं रहना है, स्त्री को विनम्र भाव में रहना है, पति की सेवा करना है। और ये स्वाभाविक है कि पति स्त्री की सेवा भी करता है, जिसे उनको जो भी कुछ चाहिए जैसे कपड़े आभूषण, और इसके बाद बच्चे चाहिए उनको, ये सब देता है, कोई कमी ना हो ये देखता है, ये एक प्रकार की सेवा है। इसके बाद उनकी कर्तव्य भी है कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना है। पुरुष गुरु के पास जाता है, पहले से पुरुष जाते थे गुरु के पास, दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हुए स्त्री को बताता है घर पे गुरुजी ने क्या बताया है, जैसे कहते तो ये संबंध ये पति और स्त्री के साथ है कि पति एक प्रकार प्रभु है, और ज्ञान देता है सहायता देता है जिससे वे अच्छा तरह से भजन भी कर सकते हैं और सुखपूर्वक घर पे रह सकते हैं, और स्त्री पत्नी विदम्बर भाव में हमेशा रहती है, तत्पर है पति की सेवा करने के लिए और उनके सास ससुर की सेवा करने के लिए, अतिथि जो आता है सेवा करने के लिए तैयार है, तत्पर रहना चाहिए। और पहले भी तो सब घर एक ही घर में रहते थे, बड़ा घर था, तो इस वहाँ पर भी पुरुष के कमरे थे और स्त्री के कमरे अलग थे। अंदर जो स्त्री रहती थी, अगर कोई अतिथि आते थे ये बाहर के कमरे, तो उनका स्वागत किया जाता थे, पुरुष उनकी सेवा भी करते थे, भोजन प्रसाद देते थे, लेकिन स्त्री सामने ना आया जाती थी और पुरुष बात करते थे और प्रसाद साथ ही साथ प्रसाद पाते थे और स्त्री बाद में प्रसाद पाते थे। ये वैदिक संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति है। और जैसे कृष्ण लीला में भी या गौर लीला में हम देख सकता है, जैसे सुबह के समय आए जैसे भोग बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो ये तुलसलाक है, वहाँ पर भी ऐश्वर्य भाव है, तो जैसे लक्ष्मी नारायण है वैसे ही ठाकुर जी की सेवा एक प्रकार से होता है। राधा कृष्ण जुगल है और उनकी सेवा होता है, भोग लगाता है। तो लेकिन लीला में थोड़ा सा लाग है, कृष्ण लीला में तो जैसे गुर लीला में भी सुबह के समय अभी तो प्रातः लीला है और उसके बाद पूर्वाने लीला है, तो रानी रसोई में है, रोहिणी माँ भी भोग बनाती है, और इसके बाद तो ये स्वयं नहीं जाती है देने के लिए वो ये प्रसाद ये खाने जो बनाया है, लेकिन सेवक गण है जो रसोई में जाता है, ले जाता है और वहाँ पर जहाँ पर प्रसाद पाता है भोजन लोई, वहाँ पर कृष्ण जी है, बलराम जी है और दो तीन उनके मित्र है, सुदाम श्रीधाम हो, मधुमंगल हो, और इसके बाद उनके पिताजी तो है, पिताजी और कभी कभी उनके बड़े भाई या छोटे भाई आ जाता है और साथ ही साथ भोजन करता है। पहले पुरुष प्रसाद पाते थे, भोजन करते थे, और जब इसके बाद संतुष्ट होते हुए उठ जाता है तब मध्य कन्या स्त्री लोग सब प्रसाद पाता है। तो जब वैदिक संस्कृति के अनुसार चलता है तो सब आनंद पूर्वक रह सकते हैं और अच्छे तरह से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। लेकिन फिर भी कालिदेश पत्र वहाँ पर भी इसके अनुसार चलना है, आजकल ये संभव नहीं है। जैसे प्रभुपाद 75 देश गए और वहाँ पर प्रचार शुरू किया और वहाँ पर ये भाव है पुरुष स्त्री समान है, और इसलिए वहाँ पर भी आजकल यहाँ पर भी होता है। पहले भी बचपन में जब हम विदेश में थे तो सिर्फ पुरुष गाड़ी चलाते थे, लेकिन इसके बाद 5-10 जब हम 15-20 साल के थे स्त्री शुरू किया है, इक्वल राइट्स, हमको भी चलाना है गाड़ी, हमको भी जॉब करना है, तो आजकल भी यहाँ पर भी होता है, हिंदुस्तान में भी भारतवर्ष में भी होता है आजकल भी। तो इसलिए हमको देखना है कालिदेश पत्र के अनुसार हमको सब कुछ चलाना है, मंदिर या घर पे भी और प्रचार भी इसके अनुसार हमको करना है, अन्यथा तो लोग नहीं आता है। और आजकल भी जैसे हमारे गृहस्थ जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा तो पति पत्नी है, इसके बाद बच्चा जाता है, लेकिन पिताजी माताजी से अलग है, यहाँ पर आया है और पिताजी माताजी कहाँ पर और है, शारिकों की भक्त नाय बन गया है। ऐसे करते हुए तो इसके लिए तो हमको देखना है, तो उसी समय तो संभव ना है कि पहले पुरुष लेता है, तो जब अकेले है तो पत्नी भी प्रसाद लेती है साथ ही साथ, और कभी कभी शहर में भी दोनों काम करती है, पुरुष भी स्त्री भी काम करती है, तो दोनों सुबह कुछ प्रसाद लेता है और शाम को भी साथ ही साथ। तो लेकिन संस्कृति हमको मालूम होना चाहिए, भाव क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए, और विशेष करके सबको विनम्र भाव में होना चाहिए। पुरुष नहीं सोचना चाहिए मैं स्वामी हूँ, मैं बारे हूँ, ये मेरी दासी है पत्नी, नहीं, ये भाव कितना है, साथी है। और वहाँ पर भी जैसे कृष्ण के लीला में भी, जब विशेष करके जो सर्वोत्तम भाव जो होता है, जैसे गोपिया का मधुर्य भाव है, प्रेमी प्रेमिका के संबंध जो होता है, प्रेम संबंध है, और अगर ये प्रतिभा में है, अगर स्वकीय भाव में भी हो लक्ष्मी नारायण, तो वहाँ पर भी जो स्त्री के जो इसमें है, पुरुष के भी है, उनके जो सर्वोत्तम जो भाव जो होता है, इसलिए ये मधुर्य भाव इसमें सब दूसरे भाव भी है, इसमें भी किंचित मात्र से वात्सल्य भाव भी कभी कभी प्रकट हो जाता है, ये सख्य भाव भी है, ये मेरे सबसे प्रिय वस्तु में मित्र बन जाता है पति। और दोनों के दस्य भाव होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, दूसरे की सेवा करना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ये है। ये तो इसके अनुसार हमको चलना है, विनम्र भाव में रहते हुए सबको, पुरुष को, स्त्री को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, सबको वनाश्रम के अनुसार चलना है। लेकिन समझना चाहिए कि गोपी भक्तों पर क्रमण हो, दास दास अनुदास, हम दास के दास के दास के दास है। एक यमुनाचार्य के प्रसिद्ध श्लोक है, संस्कृत का याद अब नहीं है, तो कहते हैं वृत्य 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 वृत्य, लगभग 7 बार उच्चारण किया है, दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास। ये हमारे स्वभाव होना चाहिए कि दास के दास के दास के दास के दास हो, इस भाव में रहना चाहिए। और अगर पाद में भी है जो, और आजकल भी अगर कोई CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पहले ऐसे था मैं बॉस हूँ, मैं मालिक हूँ, और उससे मेरी सेवा करना है, लेकिन आजकल ये भी नहीं चलता है, बाहर के संस्था भी विनम्र भाव में रहना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तत्पर रहना चाहिए, सबकी थोड़ा सा देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए। और जो पार में है और जो वस्त्र में वैष्णव जो होता है, इस विनम्र भाव में रहता है। अगर पार में भी है, मंदिर का अध्यक्ष हो, मुख्य पुजारी हो, गुरुजन भी हो, गुरु ना ही सोचना मैं गुरु हूँ, नहीं, मैं अपने गुरु के दास हूँ, और मेरे को दे दिया है ये सेवा, इसलिए मुझे शिक्षा देना है, लेकिन ना सोचता है कि मैं गुरु हूँ। अगर ऐसे सोचता है तो गुरु, भक्ति सिद्धांत ने बोला था, तो ये गाय के समान है, गाय तो पूजनीय है, लेकिन गाय क्या उपदेश दे सकती है, क्या बोलती है, मो सिर्फ यह शब्द बताती है, लेकिन दूध देती है, बढ़िया है, पूजनीय है, लेकिन क्या उपदेश दे सकती है। वैसे ही अगर कोई सोचता है मैं गुरु हूँ, तो वास्तविक गुरु नहीं है, गुरु गुरु ये बांग्ला शब्द है, गाय इसका अर्थ है, तो गाय के समान है, ठीक है, भजन करता है, लेकिन विनम्र भाव में रहना चाहिए कि हम दास के दास है। और जब शिष्य भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्यों के पास आए थे, प्रणाम करते थे भक्ति सिद्धांत को, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया थे, दासोस्मी दासोस्मी दास अस्मि, मैं आपके सेवक हूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए। और रात को देखते थे ब्रह्मचारी, उनके पास सब कुछ है, कंबल है, शालीय ऋतु में मच्छरदानी है, सब देखते थे, अगर नाइट था तो देते थे खुद। तो विनम्र भाव में रहना है सबको, तो ऐसे करते हुए जब सब विनम्र भाव में रहता है, तो वास्तव में एक प्रेम संबंध, स्नेहमय स्नेहपूर्ण संबंध तो बन जाता है, तब आगे जा सकते सब और सुखपूर्वक रह सकते हैं। गुरु तो आगे है, लेकिन फिर भी जब शिष्य बात नहीं मानता है, कभी ना अच्छा लगता है। जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब देखते थे कि शिष्य आपस में लड़ाई करते थे, मेरे को जब नया मंदिर बनाए थे बाग बाजार कलकत्ता में, सन्यासी बोलते मेरे को ये चाहिए, मैं ये कमरा चाहिए, वो ये चाहिए, तो उनको अच्छा नहीं लगा, दुखित है एक दृष्टि से, लेकिन फिर भी परमानंद का अनुभव हमेशा करता है निरंतर, क्योंकि कृष्ण के साथ है, महाप्रभु के साथ है, परमानंद का अनुभव करता है। लेकिन जब सड़क के शरीर में है, गुरु के रूप में है, जब शिष्य बात नहीं मानते उनको अच्छा नहीं लगता है, दुख अनुभव करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जल्दी ये अपना यहाँ पर शरीर भी छोड़ दिया और अगले प्रमाण की ओर चले गया प्रचार करने के लिए। श्री गुरु गोलीला में है, कृष्ण लीला में है, हमेशा वहां पर है, लेकिन यहाँ पर आ जाता भगवान की कृपा से, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति है। और निरंतर जब गोलीला है, कृष्ण लीला है, विशेष करके गोलीला में जिस हमारे चय गोस्वामी अपूर्वताचार्य जहाँ पर महाप्रभु वे वहाँ पर है, अलग अलग ब्रह्मांड तो प्रकट हो जाता है। यहाँ पर 500 वर्ष से पहले थे महाप्रभु, अभी दूसरे ब्रह्मांड में है, अलग अलग ब्रह्मांड में वहाँ पर जाते प्रचार करने के लिए, ये बद्ध जीव के उद्धार के लिए, तो उनके नित्य सिद्ध परिकारों के साथ है। चय गोस्वामी वहाँ पर भी है, इसके बाद गुरु परंपरा भी है, प्रचार कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसा ना है कि वहाँ पर है वहाँ पर ना है। आध्यात्मिक जगत में महाप्रभु हमेशा निरंतर वहाँ पर गौर लीलाओं के है, श्वेतद्वीप नवद्वीप कृष्ण गोलोक वृंदावन में है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अवतरित होता है और वैसे ही उनके शुद्ध वैष्णव और उनके ये वस्तु में सब हमारे हित के लिए यहाँ पर आ जाता है, उनके आविर्भाव होता है और ये यहाँ पर आता है हमारे उदार के लिए, जिससे हम भजन कर सकते हैं, जिससे हम आगे जा सकते, जिससे हम उत्तम अवस्था पर सकता है, जिससे हम लीला में प्रवेश कर सकता है। और ये परम गति है गौर लीला कृष्ण लीला में प्रवेश करना। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज और भगवताम की श्री प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की महाप्रसाद की।